दिन भर तारीख 4 मार्च दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरण के संकेत, लोकसभा उपचुनाव में मायावती का समाजवादी पार्टी को समर्थन।
बीजेपी के कैंडिडेट को जिस भी पार्टी का उम्मीदवार उनको हराता हुआ नजर आए उसको आप अपना वोट दे दो ताकि बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव।
भारतीय जनता पार्टी ने सपा बसपा के साथ आने पर ली चुटकी, लेकिन आजम खान बोले,
बहुत अच्छी बात है कि ये पहल यहाँ न रुके बल्कि ये पहला कदम हो, मंजिल तक हम पहुँचे।
मेघालय में नई सरकार पर देंगे अपडेट और बातचीत की संभावना तलाशने कल उत्तर कोरिया जाएगा दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधि मंडल। खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। उत्तर प्रदेश की फूलपुर और गोरखपुर लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी धुर विरोधी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया है। गोरखपुर में बीएसपी के जोनल कोऑर्डिनेटर घनश्याम खरवार ने और इलाहाबाद में अशोक गौतम ने सपा नेताओं की मौजूदगी में इस समर्थन की घोषणा की। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझौते का ऐलान किया, लेकिन फूलपुर और गोरखपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए सपा के साथ किसी तरह के करार पर कुछ नहीं कहा। जर्मनी की चांसलर अंगेला मर्केल ने सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट्स को उनकी पार्टी के साथ नए गठबंधन में शामिल होने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही पिछले कई महीनों से चला आ रहा राजनीतिक गतिरोध खत्म हो जाएगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के 2/3 सदस्यों ने समझौते के पक्ष में मतदान किया, जिससे मर्केल चौथी बार चांसलर पद की शपथ लेंगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर प्रस्तावित शुल्क के खिलाफ अगर यूरोप प्रतिक्रिया देता है तो वो और भी कड़े कदम उठाएंगे। उन्होंने चेताया कि यूरोपीय संघ के कार उद्योगों पर नए कर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए शुल्कों के कारण अमरीकी कार कंपनियों के लिए कारें बेचना मुश्किल हो गया है। अमरीका के रुख को लेकर चीन में भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के प्रवक्ता जांग येसुई ने कहा, चीन और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते परस्पर लाभ पर आधारित हैं। दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार को देखें तो ये $580 बिलियन का है। ऐसे में थोड़ी दिक्कतें होना लाजमी है, लेकिन चीन नहीं चाहता कि अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर जंग छिड़े। लेकिन चीन के हितों को नुकसान पहुंचा तो वो चुप नहीं बैठेगा। ये थे चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के प्रवक्ता के शब्द। स्विट्जरलैंड में इस बात को लेकर जनमत संग्रह हो रहा है कि सरकारी प्रसारक के लिए लाइसेंस फीस देने की बाध्यता को हटाया जाए या नहीं। स्विस नागरिकों को हर साल 7 चैनल चलाने वाले सरकारी प्रसारक को $500 की लाइसेंस फीस देनी होती है। लोगों का कहना है कि डिजिटल दौर में ये फीस ज्यादा है। वहीं विरोधियों का कहना है कि फीस खत्म होने से विविधता खत्म हो जाएगी और देश की एकता को खतरा पैदा हो जाएगा। मैथ्यूज अबाइजर नाम के शख्स ने कहा, दूसरे देशों की तुलना में हम अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं, जैसे कि अलग अलग भाषाओं का। ये स्विट्जरलैंड की खूबी है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो कोई लाइसेंस फीस को हटाने के पक्ष में मतदान करेगा वो स्विस भावना के खिलाफ जाएगा। ये थे लाइसेंस फीस की बाध्यता हटाने के विरोधी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मिस्र में एक और पत्रकार को हिरासत में लिया गया है। इससे एक दिन पहले ही 2 पत्रकारों को फर्जी खबर फैलाने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। स्थानीय मीडिया का कहना है कि खैरी रमादान नाम के पत्रकार पर अपने टीवी शो के दौरान पुलिस अधिकारियों के अपमान का आरोप लगा है। सोमवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन 2 सुरक्षा अधिकारियों को उत्तर कोरिया भेजेंगे। दोनों देशों के बीच शीत ओलंपिक खेलों के बाद आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए जो सहमति बनी है, ये कदम उसी को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है। दक्षिण कोरिया के वित्त मंत्रालय ने प्रण लिया है कि देश में गिरती जन्म दर को बढ़ाने के लिए नए सिरे से प्रयास किए जाएंगे। दक्षिण कोरिया में पिछले साल पैदा हुए बच्चों की संख्या उससे पिछले साल के मुकाबले 11% कम थी। ये 1970 के बाद का सबसे कम आंकड़ा है। सरकार को चिंता है कि कम जन्म दर और आबादी के वृद्ध होने से न सिर्फ श्रमिकों की संख्या घटेगी बल्कि जनता के कल्याण पर होने वाला खर्च भी बढ़ेगा। अफगानिस्तान में खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने इस्लामिक चरमपंथी संगठन के 2 संदिग्ध नेताओं को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इनमें उमर नाम के संदिग्ध पर काबुल में इस्लामिक स्टेट की गतिविधियों को चलाने का आरोप है। वहीं इसानुल्ला नाम के दूसरे संदिग्ध पर लोगों को भर्ती करने के काम की देखरेख करने का आरोप है। दोनों संदिग्ध अफगान नागरिक हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। पूर्वोत्तर भारत के तीन राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कल चुनाव नतीजे घोषित हुए। त्रिपुरा और नागालैंड में कल ही नई सरकार की सूरत साफ हो गई थी, लेकिन मेघालय में सस्पेंस बना हुआ था। अब ये धुंध छंटती दिख रही है। दिन भर में हम मेघालय के नए राजनीतिक समीकरणों की बात करेंगे। बात अमरीका और उत्तर कोरिया के बीच रिश्ते सुधारने की संभावना की भी होगी, लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश में बन रहे नए राजनीतिक समीकरण की चर्चा से। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों पर 11 मार्च को उपचुनाव होने हैं। ये सीटें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई हैं। उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया है। ऐसे में ये चुनाव दिलचस्प हो गए। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
गोरखपुर और फूलपुर में नेताओं के दौरों के अलावा कोई खास चुनावी सरगर्मी भले ही न दिख रही हो, लेकिन चुनाव में बसपा और सपा के साथ आने की घोषणा ने माहौल जरूर गर्म कर दिया। हालांकि इस बात की चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन त्रिपुरा और नागालैंड विधानसभा चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद ये घोषणा कर दी गई। गोरखपुर में सपा नेता उदयवीर सिंह के साथ मंच पर खड़े बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर घनश्याम खरवार ने इस समर्थन की घोषणा की।
यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है और ऐसे बहुत बैकवर्ड का भाई चुनाव लड़ रहा है, तो मानिया बहन कुमारी मायावती जी ने इन्हीं दो शर्तों पर समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है।
वहीं इलाहाबाद में बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर अशोक गौतम ने सपा नेताओं की मौजूदगी में समर्थन की घोषणा की। बीजेपी के खिलाफ सपा, बसपा और कांग्रेस के महागठबंधन की चर्चा पहले से ही हो रही थी, लेकिन कांग्रेस ने जैसे ही दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की, ये संभावना खत्म हो गई। अगले ही दिन समाजवादी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतार दिए। बसपा उपचुनाव न लड़ने वाले अपने स्टैंड पर कायम थी। पहले ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि बसपा फूलपुर में कांग्रेस और गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे सकती है, लेकिन जानकारों के मुताबिक उसने दोनों जगहों पर उन उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया है जिनके जीतने की उम्मीद उसे ज्यादा दिख रही है। इलाहाबाद में वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश मिश्र बसपा के खुलकर सपा के समर्थन में आने के पीछे ये वजह देखते हैं।
अभी को भाजपा के साथ के करीब आने से अब मायावती नाराज हुई, उन्होंने विशेष तौर से ये लोग इस पर सपोर्ट किए हैं और इसका बहुत असर पड़ेगा। जिस तरीके से अभी शर्मा का नामांकन हुआ अंतिम दौर में अंतिम दिन में उससे यही स्पष्ट होता है और क्षेत्र में एक बड़ी आम चर्चा है कि केशव मौर्य जब चुनाव होता था अभी का मतलब से थे पश्चिमी से केशव मौर्य ने भाजपा के कैंडिडेट के होते हुए भी अभी का सपोर्ट किया।
बताया जा रहा है कि सपा बसपा का ये साथ आने वाले दिनों में विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। कुछ पर्यवेक्षक इसे 2019 के आम चुनाव के प्रयोग के तौर पर भी देख रहे हैं, लेकिन खुद बसपा नेता मायावती ने इसे तात्कालिक ही बताया है।
ऐसा मैंने पार्टी के लोगों को पहले भी ये दिशा निर्देश दिए हैं और इस चुनाव में भी कि बीजेपी के कैंडिडेट को जिस भी पार्टी का उम्मीदवार उनको हराता हुआ नजर आए, भारी नजर आए, तो उसको आप अपना वोट दे दो ताकि बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव हार जाए।
बावजूद इसके जानकारों का कहना है कि इस गठबंधन का दूरगामी भविष्य उपचुनाव के परिणाम पर ही निर्भर करेगा। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
मायावती ने तो सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रही है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी के मंच पर नजर आए। इन बदलते समीकरणों को लेकर हमने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से बात की।
देखिए, अगर ऐलान किया है या करेंगे तो ये एक अच्छी पहल होगी, बहुत अच्छी पहल होगी। बहुत अच्छी बात है कि ये पहल यहाँ न रुके बल्कि ये पहला कदम हो, मंजिल तक हम पहुँचे। दरअसल जितने भी सेकुलर जहन के लोग हैं या कमजोर दबे कुचले मुसलमान सब कुछ बढ़ जाते हैं, कुछ बांट दिए जाते हैं, अच्छी पहल है। दरअसल हुआ ये है कि पिछले काफी दिनों से खुद बीएसपी के नेताओं में ये बातचीत चल रही थी कि वो अपने सुप्रीमो से बात करेंगे और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह वोटों को डिवाइड करके नुकसान में ही नहीं होंगे बल्कि मिट जाएंगे। हो सकता है ये उसका नतीजा हो।
एक बात कही जाती है कि दोनों पार्टियों के बीच में इतनी दरार अतीत में रही है, उन नेताओं में आपका नाम लिया जाता है जो इस तरह के अलायंस के समर्थन में पहले नहीं थे, लेकिन क्या ये जो हालात बदले हैं उसके बाद आपको ये
नहीं? देखिए मैं तो इसलिए उसमें नहीं आता क्योंकि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ
जी। अपनी पार्टी में तो सर आप बहुत बड़े हैं, आप बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, फैसले आप लेते हैं।
नहीं बिल्कुल नहीं लेते हैं, आपको ये गलत इत्तला है, बहुत कम फैसलों में हम शरीक हो पाते हैं और ये फैसला भी ना जाहिर है बसपा ने हमें हमसे कोई मशवरा किया है ना करना चाहिए, हम उनकी पार्टी में नहीं है और ना ही अभी हमारी पार्टी में कोई ऐसी बात हुई है जिसमें कोई मेरी शिरकत रही हो या मेरा कोई उसमें योगदान हो।
लेकिन ये तो आपने देखा होगा कि कल जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनाव नतीजे आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि इन नतीजों का असर कर्नाटक के चुनाव में या बाकी चुनाव में ही नहीं दिखेगा बल्कि 2019 तक दिखेगा।
ना ये अभी 2 उपचुनाव आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, उन 2 चुनावों में जितने वोट हैं उतने पूरे राज्य में हैं, 3-3, 4-4 हजार की सीटों पर 200 करोड़ की जानकारी है खर्च हुआ है, इतना पैसा लगाकर इतने कम कम वोटों की सीटों को जीतना और एक ऐसी स्टेट जीतना जहां 30 साल से कम्युनिस्ट पार्टी का जो बिल्कुल अपने नजरियात की अलग पार्टी है, आज भी लेनिन का राज चाहती है, काल मार्क्स का चाहती है, उसको जीत लेना कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर बहुत खुश हुआ जा रहा है। देखिए पॉलिटिकल लोग तो उसे अपनी कामयाबी कहेंगे ही, लेकिन दरअसल ये वो डर है उनका जो बोल रहा है, इस कामयाबी को बहुत बड़ी कामयाबी बनाकर, ये तो ये जो स्टेट्स बीजेपी ने जीती हैं ये कानपुर के बराबर भी नहीं है, एक जिले के बराबर भी नहीं है, असल इम्तिहान होना है उनका भी और विपक्ष का भी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। जो ये जीतेगा वही 2019 जीतेगा।
जो एक सूरत हाल 2 उपचुनावों में उत्तर प्रदेश की जमीन पर बन रहा है, आप इसे किस तरह के संकेत के रूप में देख रहे हैं और क्या आपकी तरफ से कोई पहल होगी कि आगे ये इस तरह का अलायंस कोई बना रहे?
मैं हमेशा इस बात के पक्ष में रहा कि ज्यादा से ज्यादा दलों को साथ आना चाहिए और लाइक माइंडेड लोगों को तो एक साथ होना ही चाहिए। जो लोग दबों की, कुचलों की, उपेक्षितों की बात करते हैं, अगर वाकई वो दिल से बात करते हैं, वो धोखा नहीं देते, वो ठगी नहीं करते, वो पकौड़ों में यकीन नहीं रखते, वो झूठ नहीं बोलते कि 20 लाख रुपया घर पहुंच जाएगा और 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी, तो जरूर अच्छे नतीजे निकलेंगे और एक अच्छा हिंदुस्तान सामने आएगा।
अतीत में एक अलायंस बनता रहा है बीएसपी और बीजेपी के बीच में जिस पर आपने कई बार सवाल उठाए, क्या उसकी सूरत आपको आशंकित करती है ऐसे मौकों पर?
अगर ऐसा होगा तो ये जो लोग ऐसा करेंगे उनके लिए ज्यादा बड़ी बदनसीबी होगी, वो बड़ा धोखा होगा उन लोगों के साथ जो उनसे अच्छी उम्मीद करते हैं।
आजम खान से ये बातचीत मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक पहले की गई थी। उधर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नए सियासी समीकरणों पर चुटकी ले रही है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ आने पर क्या कहा वो भी सुनिए।
ये समीकरण ऐसा समीकरण है जैसा मैंने बचपन में 2 कहानियां सुनी थी कि बाढ़ आने पर सांप और नेवला एक ही डाल पर बैठ जाते हैं और कठिनाई की परिस्थिति में शेर और बकरी दोनों एक घाट पर पानी पी लेते हैं। कल रात तक मायावती जी ने समर्थन नहीं दिया था समाजवादी पार्टी को, आज सुबह से उनकी क्या मजबूरी हो गई जो उन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन घोषित किया। ये इनका तात्कालिक समर्थन है जिसके आधार पर वो राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश है। मेरा केवल इतना ही कहना है कि लाख प्रयास करने, चुनाव में जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, चाहे गोरखपुर हो चाहे फूलपुर हो।
क्या आपको लगता है ये दोनों दल जब साथ में आते हैं तो 2019 भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती हो सकती है?
ये लोग बिहार में भी सामने आए थे और बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाए थे और सुबह समर्थन घोषित किया था मायावती जी ने, गठबंधन की बात कही थी और शाम होते होते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि मैंने केवल उपचुनाव में समर्थन दिया, फिर जैसा इसका परिणाम होगा उसके आधार पर राज्यसभा और एमएलसी में करेंगे तब आगे विचार करेंगे। तो जनता जो है इतनी बेवकूफ नहीं है, वो समझती है। और पिछले चुनाव में भी एक साथ आया था अखिलेश यादव जी का, राहुल गांधी जी का, और नारा था कि जनता को ये साथ पसंद है, जनता ने वह साथ ही पसंद नहीं किया था।
लेकिन मायावती ने मध्य प्रदेश की भी बात की, उन्होंने कांग्रेस की बात भी की, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, तो आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं?
सीधे सीधे विषय ये है यहाँ तो समर्थन दे दिया, अंधा खेल है, जीते हैं हारे, लेकिन राज्यसभा में उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरप्लस वोट को मांगा होगा, और भले ही वो राज्यसभा के लिए खुद चुनाव लड़े लेकिन अपने प्रत्याशी को राज्यसभा में ले जाने का उनका प्रयास होगा।
जब ये खबर सामने आती है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है कि कोई चुनौती इस बार सामने होगी या नहीं होगी?
नहीं, चुनाव में तो हर समय चुनौती मांगनी चाहिए और अपने विपक्षी प्रत्याशी को कभी हल्का नहीं समझना चाहिए। सामने जैसी परिस्थिति विद्यमान हो उसी प्रकार से अपने रणनीतिक प्रबंधन चुनाव का करना चाहिए और चुनाव को जीतने के लिए लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है।
ये थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। राजनीतिक दलों का किसी भी समीकरण को देखने का एक नजरिया होता है, लेकिन नए घटनाक्रम को राजनीतिक विश्लेषक कैसे देख रहे हैं ये जानने के लिए मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति पर करीबी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान से बात की।
अभी वो जरा जायजा ले रही हैं, ये बात हो चुकी होगी इन दोनों के बीच में, अखिलेश यादव और इनके बीच में, लेकिन अभी वो टटोलना चाहती हैं कि उनकी अपनी पार्टी में इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा, इसलिए वो खुल करके नहीं बोल रही हैं। लेकिन इससे ये क्लियर हो गया है कि इंक्लिनेशन है, अब समझ में उनके आ गया है कि अकेले दाल नहीं गलने वाली है और बीजेपी से अगर वाकई में लड़ना है तो कुछ गठबंधन करना पड़ेगा। अभी तक अमित शाह और समाजवादी पार्टी से तो उनका व्यक्तिगत इतना जबरदस्त झगड़ा चला है, लेकिन अब क्योंकि मुलायम टीम में नहीं है डायरेक्ट, ये भी एक कारण है कि वो राजी हो गई हैं इस तरीके के सिचुएशन के लिए।
लेकिन उन्होंने इस बीच में कई शर्तों जैसी बात की, उन्होंने ये कहा कि उपचुनाव में बीएसपी लड़ती नहीं है, वाकई एक ट्रेंड भी रहा है कि बीएसपी उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ती है। दूसरी बात, उन्होंने सीधे समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया। तीसरे, उन्होंने राज्यसभा चुनाव की भी बात की।
नहीं, लेकिन बिना नाम दिए देखिए बात तो सबको मालूम है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है, इतनी भी बुरी हालत हो समाजवादी पार्टी की, लेकिन आज की सिचुएशन में जहाँ तक जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कहा जाए या जो सबसे जो कम कमजोर नहीं है उनमें समाजवादी पार्टी ही आती है, तो इसलिए वो बड़ा इनडायरेक्टली तो कन्वे कर दिया। वो अब इतना पुराना झगड़ा है और पर्सनल इतना ज्यादा इश्यूज रहे हैं दोनों के बीच में कि एकदम से खुल के उनसे गले लगा लेने में तो वक्त लगेगा ना।
इसका आप ज्यादा फायदा किसको देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी?
आज की डेट में बेनिफिट देखिए तब पता लगेगा जब एक्चुअली ट्रांसलेट करें वोट्स में, मायावती का वोट ट्रांसफर हो जाना जो है वो इफेक्टिवली दिखाएगा कि हाँ वाकई में इनकी बात सुनी जा रही है और जो कार्डर्स हैं वो राजी हैं, क्योंकि इतना ज्यादा मतभेद रहा है और दोनों के वोटर्स में आपस में इतना ज्यादा टेंशन रहे हैं। ये जो बाई इलेक्शन है, ठीक है मायावती तो पार्टी लड़ती नहीं है तो बाई इलेक्शन में उनसे दूरी रहती है, लेकिन इसके जरिए से एक कन्वे हो जाएगा, वो रिजल्ट बतलाएगा। जहां तक विनिंग का सवाल है तो उसमें मुश्किल लगता है, इतने शॉर्ट नोटिस पे सारा वोटर ट्रांसफर हो जाए, अनपढ़ वोटर है ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है, तो वो उनको कन्वे करना ये बात इनके कार्डर से पहुंच जाए ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इससे एक ओवरऑल माहौल बनेगा कि हाँ बीजेपी से लड़ने के लिए गठबंधन के लिए लोग तैयार।
मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कांग्रेस की भी, मध्य प्रदेश की भी, तो क्या ऐसी कोई सूरत हाल बन रही है कि महागठबंधन जैसा बिहार में देखने में आया था वो आगे जाकर 2019 के लिए कुछ बन सकता है?
ये मुमकिन हो सकता है, ये शुरुआत हुई है वो, लेकिन शुरुआत हो गई है, एक अच्छी शुरुआत है, इसको यही कहा जा सकता है।
तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी?
भारतीय जनता पार्टी को अभी तक तो बेफिक्री थी क्योंकि कोई था ही नहीं, ऑपोजिशन था ही नहीं, अभी तक तो ये था कि भाई बिल्कुल अपना राज है और सबसे बड़ा फायदा यही था टीना फैक्टर की, देयर इज नो अल्टरनेटिव, कोई लाई था ही नहीं कोई इतना ज्यादा मजबूत की लड़ सके, तो अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सोचना पड़ेगा, इतना आसान नहीं रहेगा। बाई इलेक्शन में तो निकल जाएंगे क्योंकि कैंडिडेट्स का जिस तरह सिलेक्शन किया गया है और उसी में अगर कांग्रेस भी डिवाइड नहीं होती है, इनके साथ एक यूनाइटेड कैंडिडेट होता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का तो भी सिचुएशन बदल सकती थी।
उत्तर प्रदेश में दोनों सीटों पर उपचुनाव 11 मार्च को हैं, नतीजे 14 मार्च को आएंगे, ये जानकारी दे रहे थे शरद प्रधान।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब बात मेघालय की। मेघालय में हुए चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस 21 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसने आज सरकार बनाने का दावा भी पेश किया, लेकिन इस बीच 19 सीट जीतने वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 6 सीटें जीतने वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर सरकार गठन का दावा किया। राज्य में 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी के नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने अभी से कुछ देर पहले ट्विटर पर जानकारी दी कि एनपीपी, यूडीपी और बीजेपी समेत 14 विधायकों का समर्थन कोनराड संगमा के साथ है। पूर्वोत्तर की राजनीति पर नजर रखने वाले किसले भट्टाचार्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। किसले, स्वागत है आपका, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मेघालय में नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई है?
हाँ, बिल्कुल साफ हो गई है। कुछ देर पहले आज शाम राजभवन, बहुत सुंदर एक कॉलोनियल बिल्डिंग है शिलांग में, उस राजभवन से लोग जब निकले तो उन लोगों से मेरा बात हो रहा था और उन्होंने कहा कि 6 तारीख को जो स्वेरिंग इन होगा और उसमें यूडीपी जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर इस कोएलिशन का है, वो यूडीपी की लेजिस्लेटर्स ने कहा कि वो कौन उन्होंने लिखित इसमें गवर्नर को दिए, राज्यपाल को दिए कि
यूडीपी जिसके पास 6 विधायक हैं,
हाँ,
और एनपीपी के पास 19 विधायक हैं,
हाँ, और एनपीपी को यूडीपी की सपोर्ट जरूरत है ये सरकार गठन करने के लिए, और यूडीपी लोग सोच रहे थे कि यूडीपी कौन से तरफ हिलेगा क्योंकि वो कांग्रेस के साथ पहले थे तो, और ये और मेघालय की जो पूरे इलेक्शन हिस्ट्री जो रहा वो मतलब पूरे 1972 स्टेट फॉर्मेशन हुआ तब से लेकर हंग असेंबली की वर्डिक्ट लोगों ने वहां पर देते थे,
वो यानी मतलब बहुमत नहीं मिलता रहा है, किस तरह की हिस्ट्री रही है। तो ये जो 34 विधायक एक साथ आए हैं, कई दल और कुछ निर्दलीय भी छोटे छोटे दल ये एक साथ मिलकर जुटे हैं, कोनराड संगमा को इन्होंने अपना नेता माना है। हम जानना चाहेंगे कि आप श्रोताओं को कुछ बताएं कोनराड संगमा के बारे में कि इनकी पार्टी कैसी है, ये कब से राजनीति में है और क्या विजन लेकर ये मैदान में उतरे थे।
कोनराड संगमा, देखिए कोनराड संगमा जिस घर में उनकी पैदा हुआ और जिस घर में उन्होंने बड़ा हुआ तो वो एक पॉलिटिकल फैमिली रहा, वो तो मतलब आपका कह सकते हैं आपकी वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स
जी, पीए संगमा के बेटे हैं
और पीए संगमा जो है पूर्णो संगमा जो लोकसभा की स्पीकर थे और पहले एनसीपी में थे और जो सोनिया गांधी के खिलाफ जो जंग वो क्या था छेड़ा था वही पीए संगमा की लड़का ये कोनराड संगमा रहा और पीए संगमा की मेघालय की पॉलिटिक्स में नॉर्थ ईस्ट रीजनल पॉलिटिक्स में और नेशनल पॉलिटिक्स में काफी अहम भूमिका उन्होंने निभाया बहुत
जी। किसलिए मैं जानना चाहूंगा क्या ये कोनराड संगमा के पास इतना एक्सपीरियंस है कि ये इस तरह के अलायंस को संभाल सके।
देखिए कोनराड संगमा जब तक पूर्ण संगमा जीवित थे तभी पूर्ण संगमा ने कोनराड संगमा को बनाया अपने हाथों से और वो मेघालय कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर भी वो रहे और वो वार्टन यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में पढ़ के आए थे तो वो उनमें काफी काबिलियत है और उनके जो एक भाई जेम्स है और बहन अगाथा है वो सारी एक पॉलिटिकल फैमिली है तो पॉलिटिकल
जी। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा किसलिए कि एनपीपी को माना जा रहा था कि एक नेचुरल अलायंस हो सकती थी कांग्रेस के साथ, सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी कांग्रेस पिछड़ कैसे गई जबकि उसने 2 कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारा हुआ था, कमलनाथ वहां मौजूद थे, अहमद पटेल वहां थे, क्या कांग्रेस के साथ गड़बड़ रही?
मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ जो गड़बड़ रही या त्रिपुरा हो, नागालैंड हो और मेघालय हो, और मेघालय में सबसे अच्छी चांस है कांग्रेस के लिए क्योंकि उनकी जो नेशनल लेवल लीडर है या प्रेसिडेंट है उनकी कोई प्रेजेंस ही नहीं रहा, तो एक 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 पार्टी जो है कांग्रेस वो लीडरलेस रडरलेस पार्टी की तरफ उनके मोराल जो है बहुत ही डाउन रहा और मुझे लगता नहीं कि उस कोई सीरियसनेस है उस लीडरशिप में ताकि कम से कम एक स्टेट तो अपने पास रखे जो स्टेट अपने पास है
जी,
अब तो कांग्रेस के पास मतलब कुछ बचा ही नहीं है,
कुछ बचा नहीं है फिलहाल यही लगता है। शुक्रिया किसलिए भट्टाचार्य इस जानकारी के लिए।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540, 11945 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। दक्षिण कोरिया के आला अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल कल उत्तर कोरिया जाएगा। ये प्रतिनिधिमंडल उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच बातचीत की संभावना तलाशेगा। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल के सदस्य अमेरिका भी जाएंगे। पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद।
विंटर ओलंपिक की मेजबानी के दौरान उत्तर कोरिया से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश में दिखे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन एक नई पहल करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति कल एक प्रतिनिधिमंडल को उत्तर कोरिया रवाना कर रहे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के प्रमुख सू हून और नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस के प्रमुख चुंग यंग करेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के सहयोगी यून यंग चान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया
राष्ट्रपति मून जे इन नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस के प्रमुख की अगुवाई में 5 मार्च को विशेष दूतों को उत्तर कोरिया भेजेंगे। ये दौरा उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग की यात्रा के प्रति उत्तर में है। वो विंटर ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने आई थी।
ये थे यून यंग चान के शब्द। दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधिमंडल उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच बातचीत की संभावना तलाशेगा। उत्तर कोरिया के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के रिश्ते तल्ख रहे हैं। हालांकि दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने की ताजा कोशिशों के जवाब में उत्तर कोरिया कह चुका है कि वो अमरीका से बातचीत को तैयार है, लेकिन वो अमरीका और दक्षिण कोरिया के प्रस्तावित संयुक्त सैन्य अभ्यास की निंदा करता रहा है। बीते सोमवार को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो उचित शर्तों के साथ उत्तर कोरिया से बात करना चाहते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के सहयोगी चान ने बताया कि उत्तर कोरिया जाने वाला प्रतिनिधि मंडल शर्तों पर भी चर्चा करेगा।
ये
प्रतिनिधिमंडल कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त करने और दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच रिश्ते बेहतर करने को लेकर उत्तर कोरिया और अमरीका के बीच बातचीत के लिए शर्तों पर चर्चा करेगा। वो 6 मार्च को दोपहर बाद वापस आएंगे और परिणामों की जानकारी देंगे और उसके बाद अमेरिका के अधिकारियों को जानकारी देने के लिए वहां जाएंगे।
ये थे यून यंग चान के शब्द। अमेरिका और उत्तर कोरिया बातचीत करने की इच्छा तो जाहिर करते रहे हैं, लेकिन अपने रुख में लचीलापन नहीं दिखाते। उत्तर कोरिया जा रहे प्रतिनिधिमंडल की सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो दोनों पक्षों को नरमी दिखाने के लिए तैयार कर सकें।
रिपोर्ट सुना रहे थे मोहम्मद शाहिद। उधर सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बीते कुछ अरसे से चर्चा में बने हुए हैं। वो बड़े पैमाने पर फेरबदल में जुटे हुए हैं। ये प्रशासनिक फेरबदल भी है, नियमों में भी फेरबदल कर रहे हैं। उनके आने के बाद से सऊदी अरब में क्या क्या बदला है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आइए bbchindi.com पर। और अब वक्त है ये जान लेने का कि खेल की दुनिया की हलचल क्या है। मौजूद हैं आदेश कुमार गुप्त जी। आदेश जी
जी वासिल जी, मलेशिया में खेले जा रहे सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत और इंग्लैंड 1-1 से बराबरी पर रहे। इस मुकाबले में पहला गोल भारत ने किया। खेल के 14वें मिनट में शिलानंद लाकरा ने इंग्लैंड की रक्षा पंक्ति को छकाते हुए तख्ता खड़खड़ाया। मध्यांतर तक स्कोर यही रहा, लेकिन खेल के 52वें मिनट में मार्क ग्लेकहोर्न ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। अंततः इसी स्कोर पर मैच ड्रॉ रहा। इससे पहले भारत को अर्जेंटीना के हाथों 3-2 से हार का सामना करना पड़ा था। अब भारत का अगला मुकाबला मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बेहद दमदार खेल दिखाते हुए अपने पहले मुकाबले में इंग्लैंड को 4-1 से करारी मात दी थी। उधर जिम्बाब्वे में खेले जा रहे आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबलों में ग्रुप ए में संयुक्त अरब अमीरात ने न्यू पापुआ गिनी के सामने जीत के लिए 222 रनों का लक्ष्य रखा है। एक अन्य मुकाबले में आयरलैंड ने नीदरलैंड्स के सामने जीत के लिए 269 रनों का लक्ष्य रखा है। आज ग्रुप बी में जिम्बाब्वे ने नेपाल को जीत के लिए 381 और अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को 256 रनों का लक्ष्य दिया है। उधर डरबन में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की पकड़ काफी मजबूत नजर आ रही है। हालांकि थोड़ी देर पहले दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 245 रन बना लिए थे, जबकि जीत के लिए उसके सामने 417 रनों का लक्ष्य है। लेकिन ये आखिरी जोड़ी है दक्षिण अफ्रीका की जो कुछ फाइट कर सकती है। एडन माक्रम जो कि सलामी बल्लेबाज 127 रन बनाकर और क्विंटन डिकॉक 57 रन बनाकर क्रीज पर हैं।
यानी जो लय भारत ने बिगाड़ी थी दक्षिण अफ्रीका की वो अब तक बरकरार है।
जी जी जी
जी बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त जी। वक्त विदा लेने का हो रहा है, लेकिन चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर आदर्श राठौर से।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश की फूलपुर और गोरखपुर लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी धुर विरोधी समाजवाद पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया है। जर्मनी की चांसलर अंगेला मर्केल ने सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट्स को उनकी पार्टी के साथ नए गठबंधन में शामिल होने के लिए बधाई दी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर प्रस्तावित शुल्क के खिलाफ अगर यूरोप प्रतिक्रिया देता है तो वो और भी कड़े कदम उठाएंगे। स्विट्जरलैंड में इस बात को लेकर जनमत संग्रह हो रहा है कि सरकारी प्रसारक लिए लाइसेंस फीस देने की बाध्यता को हटाया जाए या नहीं। मिस्र में एक और पत्रकार को हिरासत में ले लिया गया है। इससे एक दिन पहले ही दो पत्रकारों को फर्जी खबर फैलाने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। इस पत्रकार पर अपने टीवी शो के दौरान पुलिस अधिकारियों के अपमान का आरोप है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे अजीत सारथी। फेसबुक प्रसारण में मदद की मोहम्मद शाहिद ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।